मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं सीधे सीधे मुख्य विषय पर ही आकर के आपसे उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। और यह जो विषय है अभी का नहीं है, पहले का विषय है जो मैंने अपने पास रखा हुआ था और उस पर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। इस बीच में आप पंजाब में जो घटना घटित हुई उसके बारे में पढ़ चुके हैं और पिछले दो दिनों से जो उसके आगे की घटना घटित हो रही है उसके बारे में भी आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, न्यूज चैनल्स पर भी देख और सुन रहे होंगे। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से इसे आप कैसे देखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, पहले तो तथ्य है कि घटना, एक घटना हुई है, घटना तो न्यू है, बिना घटना के हम कैसे उस पर किसी तरह के विचारों की इमारत खड़ी कर पाएंगे, संभव ही नहीं है। तो पहले आपको घटना को जानना चाहिए क्योंकि तथ्य सूत्र जो हमें मिलेंगे आगे बात को बढ़ाने के लिए वो तो घटनाओं से ही मिलेंगे। तो पहले हम घटना को देख लेते हैं, हालांकि मुझे मालूम है कि आपको इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन फिर भी चूंकि मैंने इस विषय को उठाया है, इसकी चर्चा इससे पहले मैं नहीं कर सका था, तो मुझे विस्तार के साथ तो बताना ही चाहिए। पंजाब में अमृतसर का नाम सुना है आपने, वहां एक पुलिस थाना है अजनाला। अजनाला बस दिमाग में रख लीजिए, है ना। मैं इस तरीके से भी थोड़ी बात कर रहा हूं कि किन किन बातों पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, दिमाग में कैसे चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि एक ऐसे स्टूडेंट हैं आप जो पंजाब स्टेट सिविल सर्विस में अपीयर हो रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां अजनाला कहां है, किस जिले में है पूछ लिया जाए। तो अजनाला एक पुलिस थाना है। इस पुलिस स्टेशन पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है अमृतपाल सिंह। पहले की घटना है, कुछ ही दिनों पहले के, पिछले महीने की। अमृतपाल सिंह आता है और अपने दल बल के साथ आता है, उसके साथ लोग होते हैं जिनके हाथों में हथियार हैं। आते हैं और पुलिस थाने पहुंचते हैं और बकायदे वहां इस बात के लिए दबाव डालते हैं कि उनका एक जो मित्र है, दोस्त है, लवप्रीत सिंह उर्फ तूफान सिंह, अखबारों में कहीं कहीं आपको तूफान सिंह केवल नाम लिखा हुआ मिल जाएगा तो आप ये मत समझिएगा कि ये कोई दूसरा व्यक्ति है, उसका मुख्य नाम है लवप्रीत सिंह उर्फ तूफान सिंह, इसको छोड़ दिया जाए। ये बकायदे जेल में बंद था, उस पर अपहरण के आरोप थे, पुलिस पर दबाव पड़ता है या पुलिस जो भी समझती है कि यहां इतने सारे लोग आए हैं हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, तो उनकी मांग मान ली जाती है और लवप्रीत सिंह को छोड़ दिया जाता है। पहली घटना। यहां ध्यान देने की बात एक और भी है कि जो अमृतपाल सिंह अपने पूरे दलबल के साथ आया था उसने अपने हाथों में गुरु ग्रंथ साहब लिए हुए था। गुरु ग्रंथ साहब आप जानते हैं सिख धर्म का सबसे पवित्रतम ग्रंथ, ये गुरु ही है, ईश्वर है, निर्गुण ब्रह्म है, जो भी आप कह लीजिए, वो लिए हुए था। ये बात इसलिए मायने रखती है क्योंकि बाद में जब पुलिस पर यह आरोप लगा कि उसने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, उनकी मांग को इस तरीके से मान लिया गया, वो मूक दर्शक बनी रही, तो पुलिस ने अपनी सफाई में यही बातें कही थी कि भाई वो दलबल के साथ आए हुए थे। फिर ये भी था कि उन्होंने जो तर्क रखे उस तर्क के द्वारा ये साफ लगा कि नहीं, जो लवप्रीत सिंह है उसे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। और फिर ये भी एक बात थी कि उनके हाथ में गुरु ग्रंथ साहब थे, तो ऐसे में हम क्या करते। और याद रखिए कि ये जो अमृतपाल सिंह है, पंजाब में एक संगठन है, सिख संगठन, एक कट्टरतावादी सिख संगठन है, वारिस पंजाब दे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, वारिस पंजाब दे इसका प्रमुख है, ठीक है। ये घटना घटित हुई। चलिए, इसके बाद वो सब चले गए तो अब स्वाभाविक था कि इस पर फिर पूरे देश में बात होती, एडिटोरियल कमेंट्स लिखे जाते, एडिटोरियल आर्टिकल्स आते और वो सब हुआ भी। अब ये जो दो दिन से आप सुन रहे हैं कि अब अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए वहां की पुलिस बकायदे सचेत है, सतर्क हो गई है, जगह जगह तलाश की जा रही है, छापे मारे जा रहे हैं, पंजाब में जो इंटरनेट है वो भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है, पुलिस अपनी कोशिश में है, लेकिन अभी तक अमृतपाल सिंह पकड़ में नहीं आया है। हाँ, उनके जो कुछ सहयोगी हैं उनको जरूर गिरफ्तार किया गया है। इस बीच में जो भी बातें उठी उनमें आप अक्सर पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि आलोचना हो रही थी पंजाब सरकार की, राज्य सरकार है और आलोचना होनी ही थी, इस बात की होनी थी कि इस तरीके से तो कोई भी व्यक्ति अपने लोगों को, अपने समर्थकों को लेकर के आ जाए, धौंस दिखाए और पुलिस या कह लीजिए कि पूरा का पूरा जो राज्य प्रशासन है उसके सामने मूक दर्शक बना रहे और उनकी बातों को मान ले। ये क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, देखिए इसके पीछे जो राजनीतिक वक्तव्य आपको पढ़ने को मिले होंगे। मुझे लगता है कि चूंकि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका उनसे ज्यादा वास्ता नहीं होना चाहिए कि पंजाब में चुनाव हुए थे, उसमें किस पार्टी ने किसका समर्थन लिया, क्या लिया, क्यों ऐसा किया गया, वो एक अलग मुद्दा है। चूंकि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपके जो मुद्दे होंगे वो थोड़े से अलग किस्म के मुद्दे होंगे, और उसमें कम से कम जो विशुद्ध राजनीतिक मुद्दे होते हैं, जो आरोप और प्रत्यारोप पर आधारित होते हैं, देखिए उनका कोई प्रमाण तो होता नहीं है, आरोप और प्रत्यारोप होते हैं, उसकी सफाई में फिर अपनी तरफ से बात पार्टियां कहती हैं, मुझे लगता है कि उन पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। आपका ध्यान जाना जो चाहिए वो है कि कानून और व्यवस्था और जो संविधान है और क्या होना चाहिए इन पर। तो अब इससे क्या प्रश्न उठ करके खड़े होते हैं, किस किस एंगल से आप इस घटना को देखेंगे, अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। इस घटना की फाउंडेशन क्लियर हो गई आपको, कुछ नाम मैंने बता दिए, कुछ स्थान के नाम बता दिए, कुछ चीजें बता दी, ये आपके दिमाग में होने चाहिए क्योंकि ये तथ्य है, ये कंटेंट है। मान लीजिए कि आप कोई आंसर लिख रहे हो तो अमृतपाल सिंह आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कट्टरवादी सिख संगठन का प्रमुख है, लेकिन उसी की जगह अगर आप ये लिखेंगे कि वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख है तो बात थोड़ी सी वजनदार हो जाती है ना, इसलिए मैंने वारिस पंजाब दे स्पेशली मेंशन किया है। लेकिन अगर आप भूल गए हैं, उस समय आपको नाम याद नहीं आ रहा है, तो ठीक है, आप एक कट्टरवादी सिख संगठन कह सकते हैं या कट्टरवादी संगठन कह सकते हैं, जो भी है आप कह सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न उठकर खड़े होते हैं। पहला, मैं आपको बता चुका हूं कि जो कानून और व्यवस्था है वो राज्य का विषय है, राज्य को देखना है कि हमारे यहां कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो। और आप जानते हैं कि अगर राज्यपाल को लगता है कि जो राज्य है वो कानून और व्यवस्था की स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं है और संविधान के अनुकूल व्यवस्था नहीं चल रही है, तो बकायदे वो इमरजेंसी के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। हाँ, अगर राज्य अक्षम अपने को पाता है और केंद्र से सपोर्ट चाहता है कि भाई हमें आप ये सपोर्ट दीजिए कि हमें आर्मी की जरूरत है, हमें इस तरह के सहयोग की जरूरत है, अगर उसमें फिर केंद्र उसका सहयोग नहीं करता है तो फिर राज्य सरकार की जो कमी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, दोष कहना चाहिए कि वो कम हो जाता है। तो यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, तंत्र उसके सामने पूरा असहाय सा खड़ा था। अब इतने दिनों के बाद अब जब कार्यवाही हुई है तो फिर से एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि भाई इतने समय तक राज्य सरकार क्या कर रही थी, क्यों चुप बैठी हुई थी। ठीक है, उस समय छोड़ दिया, चले गए वो लोग, लेकिन तुरंत तो कार्यवाही कर सकती थी, इस बीच में अपनी तैयारी कर सकती थी, केंद्र से समर्थन मांग सकती थी, सहायता मांग सकती थी, सहयोग मांग सकती थी, लेकिन इस बीच में भी राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। अब आप देखें कि गुरु ग्रंथ साहिब वो अपने साथ लेकर आए, आप यहां अब धर्म निरपेक्षता और धर्म का इस्तेमाल और धर्म और राजनीति का आपस में जुड़ाव, धर्म का कैसे गलत इस्तेमाल किया जाता है, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है, एक कट्टरवादी सिख संगठन के जो हेड है उनके हाथ में है, और ये जो अमृतपाल सिंह है ये बकायदे खालिस्तान आंदोलन जो हमारे देश में हुआ था उसका समर्थक माना जाता है, खालिस्तानी मूवमेंट का समर्थक। खालिस्तानी आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ऑनलाइन लेक्चर्स में मैंने इस पर थोड़ा सा बताया भी है कि 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जो ब्लू स्टार ऑपरेशन किया गया था वो खालिस्तानी जो आंदोलनकारी थे या जो एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे, खालिस्तान की मांग कर रहे थे, उसके विरुद्ध किया गया अभियान था, और उसमें बहुत से हथियार पकड़े गए थे, बहुत से इस तरह के लोग पकड़े गए थे, है ना, उसकी बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई थी, जिसे कहा जाता है ब्लू स्टार। इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, इस लेक्चर को भी आप थोड़ा सा सुन लें। तो ये खालिस्तानी संगठन का समर्थक माना जाता है, बीच बीच में अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि कैसे जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो कनाडा में नारे लगाते हैं खालिस्तान के समर्थन में, हिंदू मंदिरों का विरोध करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह की बातें सुनी जाती हैं। तो सीधी सी बात है कि इनका एक इंटरनेशनल कनेक्शन है, तो भारत के लिए तो जो इस तरह की बातें हैं वो थोड़ी सी गंभीर मायने रखती हैं। अब उसमें आप गुरु ग्रंथ साहिब को ला करके और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एक अलग प्रश्न है, इसे आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान का बहुत अहम हिस्सा है, आत्मा है, और बकायदे इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये एक नई घटना है कि आप अपने आंसर में इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, इससे भी जो एक बड़ी बात है वो ये है कि पंजाब हमारा सीमांत राज्य है। और किसका सीमांत राज्य है? पाकिस्तान का सीमांत राज्य है। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, सोच के देखिए। और अगर खालिस्तानी मूवमेंट वहां तेज होता है, या कह लीजिए कि इस तरह से अलगाववादी संगठन कोई मजबूत होता है, तो आपको क्या लगता है कि वो अपने दम पर मजबूत हो रहा होगा? क्या पाकिस्तान उसे सह नहीं दे रहा होगा? तो क्या हम अपने सीमा प्रांत को इस तरीके से कमजोर या असुरक्षित छोड़ सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से? तो नेशनल सिक्योरिटी से भी ये घटना जुड़ जाती है। नेशनल सिक्योरिटी आपके सिलेबस में है। और फिर आप जानते हैं कि आज पंजाब की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ड्रग्स की समस्या है। पंजाब लगभग आप ये कह लीजिए कि ड्रग्स की इतने ज्यादा लत में खो चुका है कि उस पर एक फिल्म बनी, उड़ता पंजाब। पंजाब उड़ रहा है, नशे में उड़ रहा है, उड़ता पंजाब फिल्म आई थी। ड्रग्स की तस्करी हो रही है। ड्रग्स की तस्करी किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम पैदा करती है, किस तरह से युवाओं को पथभ्रष्ट करती है। ड्रग्स की तस्करी के साथ साथ हथियारों की भी तस्करी हो सकती है, और कुछ की भी तस्करियां हो सकती हैं। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहने वाली घटना है। ये कुछ इसके डायमेंशंस होंगे जिन पर आपका ध्यान होना चाहिए। तो दोस्तों, इस घटना को लेकर के आज बस इतनी ही बातें हम लोग कर सकेंगे। आगे अगर कुछ घटनाएं और बढ़ती हैं तो बीच बीच में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम लोग की जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, इस बार 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच होने वाली है। ये 15 दिन की क्लासेस होती हैं। इसके लिए हिसार हरियाणा के कोमल रोहिल्ला ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो कोमल जी, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: दुष्यंत कुमार, रीना लखनऊ से, वंदना वर्मा, महेंद्र चावड़ा जोधपुर से, अंजलि सोनी सीधी मध्य प्रदेश से, वरुण कुमार, अभय कुमार और सोनाली मिश्रा। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।